शाम का वक्त था। सेवन स्टार होटल के प्राइवेट रूम में माहौल भारी और तनावपूर्ण था। मिस्टर शेरगिल अपनी कुर्सी से पीठ टिकाए एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठे थे। उनकी उंगलियां विस्की के ग्लास पर थिरक रही थीं। उनकी आंखों में हुरूर के साथ साथ वार्निंग भी थी। सामने मिस्टर रायचंद बैठे थे, चेहरा सख्त, उनकी आंखों में कई सवाल झिलमिला रहे थे। दोनों के बीच टेबल पर सिर्फ दो ग्लास और एक बोतल थी, लेकिन हवा में अनकही जंग छिड़ी हुई थी। बोलो रिधान, क्यों बुलाया तूने मुझे? कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब मिस्टर शेरगिल ने कुछ नहीं कहा तो आखिर में मिस्टर रायचंद ने ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बात की शुरुआत की। मिस्टर शेरगिल ने पहले चुप्पी तोड़ी, उनकी आवाज ठंडी लेकिन तीखी थी। रायचंद, आज मैं यहां तुम्हें वार्निंग देने आया हूं। कैसी वार्निंग? मिस्टर रायचंद के चेहरे पर सवालिया भाव उभरे, वहीं मिस्टर शेरगिल के होठों पर तीखी मुस्कान उभर आई। इतना भी अनजान मत बन यश, क्योंकि मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं। तेरे इस नाटक में नहीं फंसने वाला मैं। तू जितना शरीफ दुनिया को बनकर दिखाता है उतना है नहीं, और तू कमीनियत में कितना नीचे गिर सकता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। विधान, बकवास मत कर, क्यों बुलाया है ये बता। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मिस्टर रायचंद का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर शेरगिल ने कर्कश स्वर में कहा, तू जानता है कि आज मैंने तुझे यहां क्यों बुलाया है? फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहता है तो सुन। मानव देशमुख, वही लड़का जो तेरी बहू इनाया का फ्रेंड है, यहां मैं उसके बारे में तुमसे बात करने आया हूं। मिस्टर रायचंद के भींचे हुए जबड़े थोड़े ढीले पड़ गए और भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं, जैसे उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हों। मिस्टर शेरगिल ने उसी अंदाज में आगे बात जारी रखी, मुझे नहीं पता कि तूने उसे अपने खेल का मोहरा बनाने से पहले उसके बारे में कितना पता करवाया और कितना नहीं, लेकिन एक बात आज मैं क्लियरली तुझे बताने आया हूं। उसे कमजोर समझकर तूने उसे टारगेट किया होगा, लेकिन अब ये गलती भूलकर भी मत करना, क्योंकि अब वो लड़का अकेला नहीं है। अब मानव का रिश्ता मेरी बेटी नित्या से जुड़ चुका है। मेरी बेटी उससे प्यार करती है और जल्दी ही मैं उनकी शादी करवाने वाला हूं। उसके बाद मानव शेरगिल खानदान का दामाद बन जाएगा। रायचंद ने भौहें सिकोड़ी, ये जानकर उन्हें झटका सा लगा, लेकिन शेरगिल ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने आगे झुककर सीधे उनकी आंखों में देखा। तुम जानते हो कि पहले तुमने क्या किया था? मानव को किडनैप करवाकर इनाया को कायरव से दूर जाने पर मजबूर किया था। मेरी बेटी नित्या, जिनकी कहीं कोई गलती नहीं थी, तुमने उसके प्यार को उससे दूर कर दिया। अपनी जिस बेटी को आंखों में मैंने कभी आंसू का एक कतरा नहीं आने दिया, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से उसे अपने प्यार को खोने के दर्द से गुजरना पड़ा। मैंने उसे रोज टूटते, बिखरते, तड़पते और रोते देखा है, तेरी वजह से। मिस्टर शेरगिल का स्वर कठोर हो गया। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर अब तुमने मानव की परछाई को भी छुआ, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया, तो याद रखना रायचंद, मैं तुम्हें बर्बाद करके लग दूंगा। तुम्हारी पूरी कंपनी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी सारी इज्जत, सब कुछ खत्म कर दूंगा। गुस्से से मिस्टर शेरगिल का चेहरा काला पड़ गया था। उनका गुस्सा देखकर, उनकी धमकी सुनकर पल भर के लिए रायचंद का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की। चुप रहो, शेरगिल ने एक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं यहां तुम्हारी कोई बकवास सुनने नहीं आया, तुम्हें पहली और आखिरी बार समझाने आया हूं। मेरी बेटी और दामाद से दूर रहो, अपनी घटिया हरकतें बंद कर दो, अपने बेटे कायरव की पसंद को अपना लो। वो इनाया से प्यार करता है, इनाया के साथ वो खुश है। अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचो और ये घटिया चाले चलना बंद करो, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। जानते तो होगे ही तुम, इनाया प्रेग्नेंट है, तुम दादा बनने वाले हो। वो लड़की जिससे तुम इतनी नफरत करते हो कि उसे मारने तक की कोशिश कर चुके हो, वो तुम्हारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस खुशी के नाम पर पिछली सारी बातें भूल जाओ, फ्रेश शुरुआत करो। इसे तुम मेरी लास्ट वार्निंग समझो। अब तक तुमने जो भी किया मैंने सब माफ किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कायरव रायचंद के बाप हो, जिसे मेरी बेटी अपना बड़ा भाई मानती है। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बेटी की खुशियों के बीच आने की कोशिश भी की, तो याद रखना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में एक आंसू भी आया, तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। अगर अब तुमने इनाया को कायरव से अलग करने के लिए कोई घटिया चाल चली, तो तुम्हारा बेटा कुछ करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा, याद रखना। और इसे सिर्फ वार्निंग समझने की गलती कभी मत करना। रायचंद कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगा? मिस्टर शेरगिल मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में खतरनाक चमक थी। डर तो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि विधान शेरगिल सिर्फ धमकी नहीं देता,
वो अगर अपने पर आए तो चुटकियों में तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर सकता है। मुझसे टकराना तुम्हारी बर्बादी लेकर आएगा, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट टाइम प्यार से समझा रहा हूँ। सुधर जाओ, मेरी बेटी और उसके प्यार से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिस्टर शेरगिल ने खतरनाक निगाहों से उन्हें घूरते हुए वार्निंग दी और उठ खड़े हुए। कोट ठीक किया, मिस्टर रायचंद की तरफ आखिरी निगाह डाली। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी और मुझे तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। एक आखिरी बार वार्निंग देकर मिस्टर शेरगिल पूरे रुआब के साथ कमरे से बाहर निकल गए। रायचंद अकेले रह गए। उन्होंने ग्लास उठाया और एक झटके में उसे पूरा खाली कर दिया। उनके कानों में मिस्टर शेरगिल के शब्द पिघलते शीशे जैसे उतर रहे थे। चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और आंखों में नफरत उतर आई थी। नफरत इनाया के लिए, क्योंकि उनकी नजरों में ये जो भी हो रहा था सब उसी की वजह से हो रहा था। दूसरी तरफ घर पर इनाया अपने रूम में आराम से लेटी हुई थी। कायरव उसके पास बैठा था, उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था। इनाया की आंखें आधी बंद थी, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। क्या सोच रही हो, कायरव ने धीरे से पूछा। कायरव ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा। हाँ, और अब सब कुछ और भी बेहतर होने वाला है। इनाया ने आंखें खोलकर उसे देखा। क्या मतलब? कायरव कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर था, जिसे देखते ही जाने क्यों पर कायरव के माथे पर कुछ लकीरें उभर आई थीं। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर फोन साइलेंट कर दिया। किसका फोन था? कुछ नहीं, जस्ट अ बिजनेस कॉल। अब सो जाओ मेरी जान, तुम्हें आराम की जरूरत है। इनाया उसकी बात मान गई और उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कायरव की निगाहें खिड़की के बाहर अंधेरे में खो गईं। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, जिसे वो इनाया से भी छुपा रहा था। पता नहीं अननोन नंबर में ऐसा क्या था कि वो नंबर उसके जहन में घूमने लगा था। कुछ देर बाद उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कॉल नहीं थी, बल्कि उसी अननोन नंबर से मैसेज आया था। कायरव ने मैसेज पर टैप किया और पूरा मैसेज उसके सामने खुल गया, जिसमें बस इतना ही लिखा था, वो वापस आ गया है। कायरव के एक्सप्रेशन बिगड़ गए, माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और कुछ परेशान भी हो गया। उसने एक नज़र इनाया को देखा, जो उसके सीने से लगी लेटी जरूर थी, लेकिन अभी सोई नहीं थी। नज़र रखो उस पर, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए। जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कायरव ने मैसेज सेंड किया, फोन साइड रखा और इनाया को टाइटली हक कर लिया, जैसे उसे अपनी बाहों के घेरे में महफूज रखने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जिसमें डर भी घुला था, डर शायद इनाया को खोने का।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे रहते कोई तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले उसे मुझसे टकराना होगा। कायरव ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। इनाया शायद उसकी बेचैनी को महसूस कर गई। वो कायरव के थोड़ा और करीब हो गई, अपनी बाह उसकी पीठ पर रखकर धीरे धीरे उसकी पीठ को अपनी हथेली से सहलाने लगी। कायरव जैसे अपनी सारी चिंता और फिक्र भूल गया। उसके चेहरे पर सुकून उभरा और होंठों पर मुस्कान बिखर गई। टू बी कंटिन्यूड।